भजन संहिता 104। इस प्रकार दाऊद भजन 104 का आरंभ अपने मन को आज्ञा देते हुए करता है। भजन 104 पद 1 और 2। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। प्राकृतिक मनोहर संदेश मुझे अच्छे लगते हैं। परमेश्वर प्रकाश से अपने आप को ढांक लेता है। वचन परमेश्वर के बारे में कहता है, जो उजियाले की चादर ओढ़े रहता है, उसके निकट आना संभव नहीं। यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। मेरी रुचि सदैव खगोल विज्ञान में रही है। मुझे रेगिस्तान के अंधेरे में आकाश को देखना अच्छा लगता है, जहां सितारे सिर के ऊपर चादर ताने रहते हैं। मुझे संपूर्ण जगत की विशालता के बारे में सोचना अच्छा लगता है। मुझे दूरबीन से नक्षत्रों और आकाश गंगा को देखना और जगत की विराटता को पहचानना अच्छा लगता है, जिसमें हम रहते हैं, और इस भजन के बारे में मनन करना कि परमेश्वर आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। भजन 104 पद 3 से लेकर 6 तक। जो अपनी अटारियों की कड़िया जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नेव पर स्थिर किया है, ताकि वो कभी न डगमगाएगा। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। यहां वो नूह के समय के जल प्रलय के बारे में कह रहा है। भजन 104 पद 7 से लेकर 9 तक। तेरी घुटकी से वो भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वो उतावली करके बह गया। वो पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान से उतर गया, जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया, जिसको वो नहीं लांग सकता है और न फिर कर स्थल को ढांप सकता है। परमेश्वर ने समुद्र की सीमा बांधी है और वो फिर कभी पृथ्वी को ना ढापेगा। जैसे उसने जल प्रलय के समय किया था, तब परमेश्वर के आदेश पर जल एक जगह इकट्ठा हो गया और सूखी पृथ्वी दिखाई देने लगी। भजन 104 पद 10 से लेकर 14 तक। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वो भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाक मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। ये जरूर अच्छी आटे की रोटी है जिसे वे बनाते थे, ताजा पिसा हुआ आटा जिसमें संपूर्ण विटामिन ई होता है, जो मनुष्य के हृदय की शक्ति के लिए मुख्य विटामिन है। भजन 104 पद 16। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, क्योंकि वे ताजे और जीवंत रहते हैं। भजन 104 16 से लेकर 18 तक, अर्थात लेबनोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टान शापानों के शरण स्थान है। शापान खरगोश की तरह छोटा जानवर होता है। भजन 104 पद 19 से लेकर 24 तक। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है, तो अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह आहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हमारी तुलना में उस समय का मानव प्रकृति के अधिक निकट था। मैं सोचता हूं कि प्रकृति के अधिक निकट होने से वो आत्मिक बातों से अधिक लगाव रखता था। मैं समझता हूं जो प्रकृति के अधिक निकट है वो परमेश्वर के भी अधिक निकट है। हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं जो मनुष्यों के कामों से भरा है, और हम लोग मनुष्य के कार्यों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाते। मनुष्यों के कार्यों के प्रतिफल जैसे गाड़ियां, जेट, हवाई जहाज आदि चीजों से आप मनुष्य के हाथों के कार्य देखते हैं। हमने आकाश को इतना गंदा कर दिया है कि उसका नीला रंग हम नहीं देख पाते। हम सितारे नहीं देखते। जहां तक हमारी आंखों का संबंध है, हमारे पास मनुष्यों का नकली प्रकाश है जो तारों को छिपा देता है, जो सितारों के प्रकाश को धुंधला करता है। इसलिए हम लोग रात भर नहीं चलते जैसे उस समय के लोग चलते थे। हम सितारों के प्रति जागरूक नहीं हैं जैसे वे थे। हमारे पास चिकनी और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, घर से जुड़े घर है, जहां भवनों के पास हमारे लिए हरियाली की जगह बहुत कम रह गई है। इसलिए हम पेड़ों, फूलों और सब्जियों के प्रति जागृत नहीं है, जो परमेश्वर के कार्य है। परंतु ये लोग कृषि संबंधी संस्कृति में प्रकृति के निकट नीले आकाश के नीचे रहते थे। वे परमेश्वर और उसके कार्यों और रचना के प्रति बहुत जागृत थे। दुर्भाग्य से हमने ये सब भुला दिया है, इसलिए ये अच्छा है कि हम छुट्टी लेकर बाहर जंगल में जाएं, यदि हो सके तो रेगिस्तान में जाएं या पहाड़ों पर। पेड़ों के बीच, नदियों और झील में प्रकृति को देखें। प्रकृति तथा परमेश्वर के कार्य अर्थात परमेश्वर के हाथ के कार्यों का मिलाप करें और फिर से श्रद्धा और भय से भर जाएं। ये एक प्रिय भजन है जब भजनकार इन सब बातों के बारे में कहता है, प्रकृति और प्रकृति की सारी चीजों को निहारना। भजन 104 पद 24 में आगे लिखा है, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। हम परमेश्वर की बुद्धि को पत्तों की बनावट में, हिरण या जानवरों में और उनकी क्षमता में देखते हैं। भजन 104 पद 24 से लेकर 26 तक। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है, इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लेबियातान भी। कुछ लोगों का सोचना है कि ये पद वेल मछली के बारे में है। भजन 104 पद 26 से लेकर 29 तक, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करें। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हम परमेश्वर पर कितना निर्भर है, वो हमारी सांस ले लेता है और हम मर जाते हैं। भजन 104 पद 30 से लेकर 34 तक, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। कुदरत का पालक होना और कुदरत में परमेश्वर का हाथ देखकर और परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि तथा उसकी महिमा के प्रकाशन को देखते हुए भजनकार के मन में गीत उभर आता है। उसकी स्तुति करते हुए वो कहता है, उसका मनन करना कैसा मधुर है, मैं परमेश्वर में आनंद करूंगा। भजन 104 पद 35, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, या की स्तुति करो।